9 नवंबर दिन शनिवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या में विवादित भूमि पर बनेगा मंदिर। नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर फैसले पर खुशी जताई।
भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया।
मुस्लिम पक्ष ने कुछ जगह फैसले पर संतोष जताया तो कुछ जगह असंतोष। सांसद असदुद्दीन ओवैसी,
हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे।
आज पूरे कार्यक्रम में इसी घटनाक्रम पर होगी चर्चा। इंडिया बोल कार्यक्रम आज नहीं होगा और पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पुराने साथी रामदत्त त्रिपाठी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुना दिया है। विवादित जमीन रामलला विराजमान के हिस्से आई है। अपने फैसले में कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग जगह देने के निर्देश दिए हैं। जजों की बेंच ने इस जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा उचित माना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर अयोध्या पर एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक अयोध्या के फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इससे मोदी सरकार की कट्टरता झलकती है। कुरैशी ने इस पर भी हैरानी जताई कि जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया उसी दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला क्यों सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर साहिब गलियारे को लेकर भारत की भावनाएं समझने, उन्हें सम्मान देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। करतारपुर गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल जिले के करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ता है। श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल दिया गया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने बर्लिन की दीवार गिराने की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बर्लिन स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सहिष्णुता के लिए हमेशा खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि नवंबर के घटनाक्रम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची और मजबूत नहीं हो सकती जिसे तोड़ा ना जा सके। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पहली अपील हारने के बाद दोषी कैदियों को जेल जाने की जरूरत नहीं। लूला डी सिल्वा बीते साल अप्रैल से ही 9 साल की जेल की सजा काट रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। ब्रिटेन में उनके वकील जॉन वॉट्स ने इसे अपनी जीत बताया है। ये मूल सजा को खारिज करने जैसा नहीं है बल्कि आदेश ये है कि उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए था। ब्राजील के कानून के अनुसार हाल तक ये नियम था कि जब तक व्यक्ति की सभी अपीलों पर सुनवाई नहीं हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी में भी हमारी बहस के केंद्र में यही था कि उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज एक छोटी जीत मिली है। ये थे डी सिल्वा के वकील जॉन वॉट्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कंबोडिया के विपक्षी नेता सैम रेंसी 14 सालों के निर्वासन के बाद अपने देश लौटने की कोशिश में मलेशिया पहुंचे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वो आगे की यात्रा कर पाएंगे या नहीं। गुरुवार को मलेशिया के अधिकारियों ने रेंसी के सहयोगी नेता मू सोचवा को कंबोडिया की फ्लाइट पकड़ने से रोक दिया था। दोनों ही नेताओं ने कंबोडिया के स्वतंत्रता दिवस पर देश लौटने का दावा किया था। उनकी योजना प्रधानमंत्री हुन सेन के खिलाफ एक विरोध मार्च करने की है। उम्मीद बनाए रखिए, हम सही दिशा में हैं। लोकतंत्र विजयी होगा। मलेशिया में लोकतंत्र बना हुआ है, कंबोडिया में भी लोकतंत्र आएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मलेशिया को अपना मॉडल मानते हैं। ये थे कंबोडिया के विपक्षी नेता के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में विवादित जगह को रामलला का बताया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए। वहीं अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार मानते हुए यह भी कहा है कि अयोध्या में मस्जिद किसी खाली स्थान पर नहीं बनाई गई थी। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सूचना आई कि अयोध्या विवाद का फैसला शनिवार सुबह आएगा। ये सूचना प्रकाशित होते ही देश भर की सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गईं। स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं की छुट्टियां कर दी गईं। अयोध्या में जमीन से जुड़े मालिकाना हक के इस विवाद की हिंसक पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक तनाव और बेचैनी के माहौल ने देश को जकड़ लिया। नवंबर की छोटी रात लोगों को लंबी लगने लगी। शनिवार को जब सुबह हुई तो देश भर में सुरक्षा बल गश्त कर रहे थे। पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी थीं। 10:30 बजते ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले को पढ़ना शुरू किया। अगले आधे घंटे में ये साफ हो गया कि जहां कभी बाबरी मस्जिद थी, वहां अब करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का मंदिर बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। एक वकील ने पत्रकारों को बताया,
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक अल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक अल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करे। उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की।
अदालत ने भगवान रामलला विराजमान का दावा मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैसले के 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे। हिंदू महासभा से जुड़े वकील वरुण कुमार सिन्हा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जो कि सामाजिक सद्भाव को बनाते हुए हिंदू पक्ष को विवादित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा।
अदालत ने निर्मोही अखाड़े के दावे को तो खारिज कर दिया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्मोही अखाड़े को मंदिर के प्रबंधन के लिए बनने वाली ट्रस्ट में उचित स्थान देने का निर्देश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के फैसले को मायूसी के साथ स्वीकार किया है। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल इलियास ने कहा,
पहली बात तो ये कि इस फैसले से मायूसी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर हमें उस जगह से महरूम किया है, हम ये पूरे केस में अभी तक समझ नहीं पाए। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर मस्जिद किसी मंदिर को डिमोलिश करके नहीं बनाई गई थी तो वो मस्जिद थी, वो ताकायम मस्जिद रहेगी। इस्लामिक फेथ यही है। 30 दिन के अंदर हमको रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का हक हासिल है। हमें ऐसा लगता है इस वक्त में कि हमें रिव्यू के लिए अच्छा खासा मवाद इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी और अगर ये फैसला होता है कि हमको रिव्यू में जाना है तो रिव्यू में जाएंगे।
शनिवार शाम होते होते देश भर ने इस फैसले को शांति से स्वीकार कर लिया। 1045 पन्नों पर प्रकाशित अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे लंबे और ऐतिहासिक विवाद के एक अध्याय को समाप्त कर दिया है और देश के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए आपसी सौहार्द और सद्भावना का एक नया अध्याय लिखने के लिए कई पन्ने खाली छोड़ दिए हैं।
दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट। और आइए हमारे आज के मेहमान रामदत्त त्रिपाठी को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
नमस्कार
रामदत्त जी, आपकी थोड़ी टिप्पणी इस जजमेंट पर।
देखिए 35 साल से ये मामला देश में एक बहुत बड़े कह सकते हैं तनाव का, दंगों का एक कारण बना हुआ था, लोगों में चिंता भी थी, एंग्जाइटी भी थी, तो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। अब बाकी उसमें कानूनी ढंग से नुक्ताचीनी की जा सकती है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये साहस दिखाया कि फैसला दिया और फैसला सर्वसम्मत है,
ये बड़ी बात है। आपसे आगे भी अभी बात होगी। कल रात ये तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर आज फैसला सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था। आज कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई थी और एहतियातन स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हमारे साथी विनीत खरे उस समय अदालत में मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया। मैंने विनीत खरे से पूछा कि क्या माहौल था कोर्ट में।
रिहान, मैं करीब 9 बजे पहुंचा था अदालत के प्रेमिसेस में और हमें बताया गया था कि 10:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सड़क थी वहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। वहाँ पे आपने देखा होगा पार्किंग होती है, जो लॉयर्स की पार्किंग होती है वहाँ पर कोई पार्किंग अलाउड नहीं थी, तो काफ़ी दूर आपको पैदल चलकर आना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो लॉन है वहाँ पर पत्रकारों का भारी जमावड़ा था, कई पत्रकार थे, कई नॉन जर्नलिस्ट भी थे जो एक्टिविस्ट टाइप के मुझे लगे। उनसे होते हुए सिक्योरिटी को क्लियर करते हुए मैं कोर्ट नंबर 1 के बाहर पहुँचा। कोर्ट नंबर 1 जहाँ पर फैसला आना था वहाँ पर भी वकीलों की काफ़ी बड़ी संख्या मौजूद थी, दोनों पक्षों के वकील, चाहे मुस्लिम पक्ष हो हिंदू पक्ष हो, दोनों वकील मौजूद थे और उनके चेहरे पर एक एक्सपेक्टेशन था, कोई बात करने को तैयार नहीं था, कोई सब लोग पत्रकार आपस में डिस्कस कर रहे थे क्या हो सकता है, सब अपना दिमाग लगा रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे। लेकिन जो वकील थे, एक वकील ने, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो सकता है, कहते हैं उन्होंने बोला ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। राजीव धवन, वो तो बिल्कुल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, तो कोई बात करने को तैयार नहीं था।
अच्छा ये बताइए, अब आप अदालत के अंदर पहुँचे और 10:30 बज चुके और 5 जज घुसे, वो बिल्कुल आंखों देखा हाल बताइए, किस तरह का सीन था वहां पर।
देखिए 10:30 की बात थी, 11 तक बज गए, काफी ज्यादा भीड़ थी, तो बड़ी मुश्किल से होते हुए, भीड़ भाड़ से होते हुए मैं अंदर कोर्ट रूम में पहुंचा। कोर्ट के बिल्कुल जो पीछे वाला जो दीवार से लगी जो कुर्सी होती, मैं वहां पर खड़ा था और आपस में लोग बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जज, सारे 5 जज आए और शोर शराबा थोड़ा सा कोर्ट में ज़्यादा था, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि लोग शांत रहें, तो लोग धीरे धीरे फिर शांत हुए और उनके चेहरे पर ऐसे मुझे कोई ऐसे एक्सप्रेशन नज़र नहीं आया, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस सा चेहरा था। और वो लोग आपस में, जिसे कहना चाहिए आपस में, उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और जो CGI है रंजन गोगोई बिल्कुल बीच में बैठे थे, बाकी के जो 2-2 जजेस थे उनको उन्होंने फ्लैंक करके रखा हुआ था और जो CGI थे उन्होंने फिर धीरे धीरे करके, उन्होंने शुरुआत में कहा कि 1/2 घंटे करीब लगेंगे फैसले को पढ़ने में, और जैसे ही जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, कोई टॉप लाइन हुई, तो थोड़ी सी बीच में आपस में लोग बात करने लगते थे, है ना, फिर लोग अगल बगल देखते थे एक दूसरे के चेहरे पर, तो फिर उसके बाद से जो बगल वाले लोग थे कहते थे शांत होइए सुनने दीजिए, बिकॉज इतनी पूरा पैक था पूरा वो कोर्ट रूम। और सैटरडे को वैसे तो छुट्टी रहती है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि जो सैटरडे, पहली बार सैटरडे को एक तो कोर्ट खुला है, जजमेंट दिया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में लॉयर्स और बिल्कुल पैक्ड माहौल में पूरा वो जो जजमेंट पढ़ा गया 1/2 घंटे।
जब चीफ जस्टिस ये फैसला सुना रहे थे तो वहां दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी?
देखिए मैं जहां पर खड़ा था उसके आसपास जो हिंदू पक्ष के कुछ वकील या फिर कहें उनसे जुड़े हुए लोग खड़े थे, तो उनके ऑफ कोर्स डिलाइट जो उनके एक्सप्रेशन पे था और थंपिंग हैंड बिल्कुल मुट्ठी लेकर करते हुए एक्सप्रेशन थे कि दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स। और जब कोर्ट डिस्पर्स हुआ, जब आखिरी फैसला सुना दिया गया और जब सब लोग बाहर आ गए और मैं थोड़ा सा आगे गया, जफरयाब जिलानी और जो राजीव धवन आगे सबसे आगे बैठे थे, मैं वहां तक उनके पास पहुंचा और वो आपस में बिल्कुल डिस्कशन में मौजूद थे, तो उनका चेहरा, मैं मुझे ऐसा लगा कि उतरा हुआ था चेहरा, और उन्होंने साफ किया कि बिल्कुल उनको लगा कि मैं उनकी बातों के बीच में क्या शायद डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो मैसेज साफ था कि मैं वहां से चला जाऊं, तो मैं फिर बाहर आ गया।
ये थे हमारे साथी विनीत खरे। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। RSS, BJP और कांग्रेस ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ लोगों ने इस पर असंतोष जताया है। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता को अभिनंदन का पात्र बताते हुए मोहन भागवत ने कहा,
इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें।
मोहन भागवत के विपरीत ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन की खैरात नहीं चाहिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौकफ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस JS वर्मा ने कहा था। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है, हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मूल बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को ठीक से अमल में लाना होगा।
इस निर्णय की दृष्टि जिस तरफ है उसका भी पालन ठीक से किया जाना चाहिए और इस निर्णय के अनुपालन की जिम्मेदारी जिस भी संस्था पर पड़ेगी उसको भी बहुत सोच विचार कर एकता के तरीके से इसका अनुपालन करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि श्रीराम तो सारे विश्व के हैं, वो केवल किसी एक संप्रदाय जाति भाषा या भूगोल से बंधे हुए नहीं हैं और भारत में तो जो जितने भी मुख्य संप्रदाय रहे हैं सभी ने श्री राम को एक आदरणीय या पूजनीय व्यक्तित्व के रूप में माना है।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल की जीत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आस्था पर राजनीति करने वालों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा।
वर्षों बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर दिया। मुझे लगता है ये मामला किसी व्यक्ति विशेष समूह या दल को श्रेय देने का है ही नहीं। सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, भारत भक्ति सभी के लिए जरूरी है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
रामनाथ जी, अभी आपने ओवैसी की टिप्पणी सुनी। उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन की खैरात नहीं चाहिए, ये तथ्यों की नहीं आस्था की जीत है। आपकी क्या राय है?
देखिए, वो खुद बड़े कानून के जानकार हैं और कानूनन उनकी बात में कुछ दम है कि भाई वो लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर मुकदमा वो हार गए थे तो फिर ज़मीन देने का कोई तुक नहीं था, लेकिन उस फैसले में ही लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम संविधान के अनुच्छेद 142 में जो हमको विशेषाधिकार है उसका पालन करते हुए हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को 42 ये जो 5 एकड़ ज़मीन देने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा शायद ये थी कि ला से ज़्यादा कि एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में कायम हो और दोनों को वो एकोमोडेट करना चाहते थे कि अगर एक पक्ष को मुख्य जगह दिया है तो दूसरे पक्ष को भी हो। तो उनकी मंशा ये थी, ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में तो हम लोग पंच परमेश्वर कहते हैं तो इसको पंचों का फैसला मान लीजिए, कानून की कसौटी पे अगर करेंगे तो फिर कई बातें आ सकती हैं।
अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर देश को संबोधित किया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि यह फैसला सर्वसम्मति से आया है, जैसा कि रामदत्त त्रिपाठी कह रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा,
साथियों, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती है, ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं और इसलिए देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली आज विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संदीप सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के भाषण पर नजर रखे हुए थे और क्या क्या बातें कहीं।
जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लगभग 11 मिनट का उनका संबोधन था। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर ही वो दिन था जब बर्लिन की दीवार गिरी थी, 9 नवंबर को ही, यानी कि आज भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारा खुला और आज 9 नवंबर को ही अयोध्या का फैसला आया, जो ये बताता है कि आज का जो दिन है वो जुड़ने जोड़ने का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि फैसला आने के बाद हर वर्ग, हर धर्म ने जिस तरह से इस फैसले का स्वागत किया है वो भारत की संस्कृति को एक तरह से प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विविधता में एकता का मंत्र बताता है। इसके अलावा उन्होंने ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन का समापन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सोनी आपका। रामनाथ जी, ये बताइए कि क्या ये जो फैसला आया है इससे आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को त्वरित राजनीतिक लाभ मिलेगा?
बिल्कुल, वो कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो 2-3 साल ले जाएंगे अगले चुनाव तक, और चुनाव के पहले उसका अगर उद्घाटन होगा, जैसे सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, तो जाहिर है कि वो हिंदू समुदाय को या देश को ये कहेंगे कि हमने ये वादा पूरा किया। लेकिन देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ बातें सावधान भी की है कि इस फैसले को कैसे लागू करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 1993 में जमीन अधिग्रहण कानून बना था उसके तहत उनको जमीन का बंटवारा करना है, ट्रस्ट गठित करना है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि सबको साथ लेके चलना है। देखिए, एक में सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद तो इस 84-85 में आई, 79 में, और निर्मोही अखाड़ा 150 साल से वहाँ संघर्ष भी कर रहा था, पूजा अर्चना भी कर रहा था। तो कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा है कि भाई उनको मैनेजमेंट में जगह देनी चाहिए। तो अब अगर बड़प्पन दिखाते हैं सरकार, उस पर निर्भर करेगा। और एक चीज़ मैं कहूँ कि जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार राजधर्म निभाना चूक गए थे, अब उनको राजधर्म निभाना होगा।
जब ये फैसला सुनाया गया तो हमारे साथी जुबैर अयोध्या में थे। आइए सीधे चलते हैं जुबैर अहमद के पास अयोध्या। जुबैर, बताएं अयोध्या के लोगों ने किस तरह से लिया है इस फैसले को?
देखिए, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो वहां पर अधिकतर लोग जो है अपने टीवी सेट्स से जुड़े हुए थे और टीवी चैनलों को देख रहे थे कि जब फैसला आया तो काफी लोग जो है सड़कों पे आ गए और खुशी से नारे वारे लगाने लगे, और इनमें एक तरह का जोश था कि इवेंचुअली जो उनको राम मंदिर के निर्माण का फैसला आ गया, बहुत खुश हुए वो। लेकिन कई लोगों ने हमें ये भी बताया, हमने साधुओं से बात की, संतों से बात की, आम नागरिकों से बात की, तो अक्सर इस बात पे जोर दिया लोगों ने कि वो खुश तो है इस फैसले से, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा रिलीफ का एहसास हो रहा है कि चलो इतना लंबा जो इतना तूल पकड़ गया था ये मुद्दा अब अंत हो गया है, उनको ऐसा लगा। और अब जो है हिंदू मुस्लिम जो है मिल कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के समुदायों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था कभी, वो बाहर के लोग आके यहाँ काम कर या फिर राज मुद्दे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते थे, उसका भी उनके हिसाब से अब अंत हुआ। तो एक रिलीफ का जो एहसास होता है उनके अंदर, खुशी का इसके एहसास से थोड़ा सा ज्यादा मुझे नजर आया।
बहुत बहुत धन्यवाद जुबैर अहमद आपका अयोध्या से। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम तौर पर लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद इससे अलग फैसले की भी उम्मीद थी। लखनऊ में हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के कुछ लोगों से इस फैसले के बारे में बात की।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस फैसले के बारे में लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं, ले रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लखनऊ में यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो फैसला आया है उस पर उनका क्या कहना है? फैसला देखा है आपने?
जी देखा है।
अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है कि इतने दिन बाद ही आया है फैसला?
जी वो तो आया है, जब सुप्रीम कोर्ट लिया है फैसला तो अब सही लिया होगा। हम लोग को जो खुशी नहीं है तो गम भी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, जब हम लोग को जितना दिन रहते दोनों तो लड़ाई झगड़ा ही था, हम लोग को हार नहीं में जीते हैं, हम लोग हार को जीते हैं, यही हमारे लिए सुविधा है।
ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप हारे हैं?
हम लोग खुशी नहीं है तो हम लोग के दिल में भावना भी नहीं है।
मेरा नाम अमानुल्ला है। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरा पूरा सम्मान करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय सबसे ऊपर है हमारे लिए, तो उसने जो भी फैसला दिया वो बिल्कुल सही है और बहुत बैलेंस फैसला है। हमारे हिंदू भाइयों की भी भावनाओं का ख्याल रखा गया और मुस्लिमों की भी भावनाओं का ख्याल रखा गया है। फैसला बहुत ही अच्छा आया है।
ये तो मेहरुन निसा जी हैं, ये कह रही हैं कि इसमें हमारी, इनको लग रहा है कि इनकी हार हुई है। ऐसा
नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और हमें बहुत खुशी है। हमें तो इतनी खुशी है कि एक अध्याय का समापन हो गया, सर का दर्द खत्म हो गया। कुछ लोगों ने अपनी बेवजह रोटियां सेंकी, कुछ लोग जो ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, इस मसले को लेकर 20-25 साल से अपनी रोटियां सेक रहे थे, कुछ कहां से कहां पहुंच गए और कुछ कहां से कहां पहुंच गए। तो ये एक अध्याय का समापन हुआ। हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम आगे अब कुछ और देखा जाएगा।
अब एम्प्लॉयमेंट पे काम होना चाहिए और भी जो हमारे मुद्दे हैं हिंदुस्तान के उन पे काम होना चाहिए, विकास के ऊपर काम होना चाहिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह कह रहे थे, लेकिन अब ये इस मुद्दे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और मंदिर बने, मस्जिद बने, जो भी होना होने, लेकिन अब उस पर बात करो।
हम लोगों को बहुत सुकून है और सबको बहुत सुकून
है। नहीं, हम लोग को वो भेदभाव नहीं है, अब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहे, समझौता में रहे, यही सही है हमारे माँ बहनों के लिए और बाकी समाजों के लिए।
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो पूरे देश के लोगों को ध्यान में रख के किया है और इस देश के लोग जो है इस फैसले के साथ हैं और सारे धर्मों के बीच अमन चैन की शांति बनी रहे, इसके इसको पैगाम देने के लिए सारे लोग निकले हैं और सारे लोग जो महसूस कर रहे हैं कि जो फैसला है वो सबके पक्ष में है, मुस्लिम वर्ग के भी पक्ष में है और हिंदू वर्ग के भी पक्ष में।
आप लोग क्या इसी तरह के फैसले की उम्मीद कर रहे थे या इससे कुछ इतर?
नहीं, इस तरह के फैसले की उम्मीद ये थी कि जो मतलब तथ्य पिछले दिनों जो सामने आए थे उससे ये लग रहा था कि फैसला का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक तरफा फैसला तो है नहीं, मुस्लिम बिरादरी के भी पक्ष में है क्योंकि मस्जिद के लिए जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है वो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और ये नेचुरल फैसला माना जाएगा इसको।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान की पहली विशेषता ये फैसला उसके ऊपर खरा उतरता है एंड दिस इज द ए प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस। उस नेचुरल जस्टिस के ऊपर ये फैसला है, ये काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं और तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसका हम स्वागत करते हैं। और देखिए, देर इज़ नो 100% इन दिस यूनिवर्स। 94.6 के ऊपर आप फिजिक्स में भी नहीं जा सकते, तो एरर तो उसमें आएगा ही, वो नेचुरल जो भी एरर है उसका समाधान प्रकृति करती है।
तो हम लोग को उसमें भेदभाव
ना करके इन लोगों का यही कहना है कि जो भी है फैसला आया है इससे किसी की ना हार हुई है ना या जीत हुई है, या कोई अगर इस तरह से देखता भी है तो उसको नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे जो विवाद लंबे समय से चल रहा था उसका अब पटाक्षेप समझा जाए। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
रामनाथ जी को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रामनाथ जी, ये बताइए कि क्या ये फैसला नज़ीर नहीं बनेगा दूसरे आंदोलनों के लिए? मेरा इशारा काशी और मथुरा की तरफ।
देखिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर जो कट्टरपंथी लोग हैं और जिन लोगों ने उस समय भी BJP के नेताओं के अवहेलना करते हुए मस्जिद गिरा दी थी, तो ऐसे लोग जैसे विनय कटियार ने बयान दिया था कि अगर हम अयोध्या जीत भी जाते हैं तो भी हम काशी मथुरा जाएंगे, तो BJP को काफ़ी आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा अपने लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर।
आपको लगता है कि राम जन्मभूमि एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में अब समाप्त हो गया, वो मुर्गी देने वाली अंडा देने वाली मुर्गी अब नहीं रही?
ये तो देखिए, जो देश का मूड है वो लगता है कि लोग मंदिर मस्जिद की ये राजनीति से और दंगे फसाद से, कर्फ्यू से ऊब गए थे प्रतिमन से, तो लोगों को तो लगता है कि ये पटाक्षेप हो गया और कम से कम अब चुनावी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई बाधा नहीं रही ना। देखिए, निगेटिव कैंपेन चलाना आसान होता है कि साहब फला रोक रहे हैं, अब तो कोई रोक नहीं रहा। अब बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे से बनाएं, सबका साथ लेके बनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदत्त त्रिपाठी। दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की कपिल देव सिंह ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।